हरे कृष्णा। आज भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है, हैप्पी बर्थडे। और इसलिए सभी लोग बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं। हमारे कोई सगे संबंधी के जन्म दिवस पर हम सब खुश हो जाते हैं। तो भगवान तो हम सबके परम पिता हैं, हमारे सबके प्राण धन हैं, और आज उनका जन्म दिवस है तो कितना आनंद की बात है। आपने नाटक में सुना, नंद के आनंद भयो भयो जय कन्हैया लाल की। तो कन्हैया लाल श्री कृष्ण ने इस दिवस पर संसार में अपनी लीला प्रकट करना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति माम एति सोऽर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और मेरे कर्म दिव्य हैं, और जो इस बात को तत्वतः जान लेता है वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाता है और उसे पुनर्यहां जन्म नहीं लेना पड़ता, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कौन हैं, ये सही तरह से तत्वतः जानना बहुत आवश्यक है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता भी श्री कृष्ण को समझ नहीं पाए हैं। तो अगर इस संसार के लोग श्री कृष्ण को गलत समझें तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, हालांकि दुख की बात है। जो व्यक्ति श्री कृष्ण को सही ढंग से समझ लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है, और जो व्यक्ति भगवान को जान नहीं पाता उसका जीवन असफल व्यर्थ। मनुष्य जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए हमें मिला है, इसलिए भगवान के भक्तों के संग में आकर भगवान श्री कृष्ण के बारे में हमें सुनना चाहिए, बोलना चाहिए, और ऐसे हम कृष्ण तत्व को वास्तव में जान पाएंगे। आपने देखा नाटक में कि भगवान श्री कृष्ण एक साधारण बालक की तरह लीला कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक साधारण बालक है, भगवान हर अवस्था में सर्वशक्तिमान रहते हैं, उनकी शक्ति में कोई घटन नहीं होता, उनकी शक्ति अनंत है। जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं इस पृथ्वी पर तो जिस रूप में वो प्रकट होते हैं उस रूप के अनुसार जो उनको कार्य करने चाहिए, जैसे उन्हें व्यवहार करना उचित है संसार के नियम के अनुसार, वो वैसे ही कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। यहां संसार में हम देखते हैं कि छोटा बच्चा जो होता है वो इसी प्रकार से व्यवहार करता है जैसे कि श्री कृष्ण बाल लीला कर रहे थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक साधारण बालक की तरह घूमते थे, फिरते थे, माखन चोरी करते थे, शरारतें करते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक साधारण बालक हैं। और ये बात को सिद्ध करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने बीच बीच में ऐसे अद्भुत लीलाएं की हैं जिनमें उन्होंने अपनी शक्ति का लेश मात्र प्रदर्शन किया। आपने देखा कि माता यशोदा ने कन्हैया लाल को, श्री कृष्ण को, एक उखल से बांध दिया। वो उखल तो बहुत भारी था और श्री कृष्ण तो बहुत छोटे थे, लेकिन बड़े आसानी से भगवान श्री कृष्ण ने उस उखल को खींच दिया और दो बड़े बड़े पेड़ों को गिरा दिया। अब जो भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांडों को चलाते हैं तो उनके लिए दो पेड़ गिराना कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सी बात है। लेकिन फिर भी वृंदावन में जो लोग रहते थे, ब्रजवासी, उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतना तीव्र प्रेम था कि उस प्रेम के मारे वो ये नहीं समझ पाते थे कि हमारे बीच में जो बच्चा है जिसको हम कृष्ण बोल रहे हैं वो भगवान स्वयं है। वो तो केवल ऐसा सोचते थे कि ये तो बच्चा है, नाजुक है, इसकी रक्षा हमें करनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान की योग माया के प्रभाव में आकर वो वास्तव में कृष्ण कौन है इसको उनको पहचान नहीं पाए। वृंदावन के निवासी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पिछले जन्मों में बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्त हुए हैं, कई जन्मों से उन्होंने तपस्या की, भगवान की भक्ति की, इसलिए उनको वृंदावन में श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं में भाग लेने का सुअवसर प्राप्त हुआ। नहीं तो ऐसे कैसे संभव है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ में ऐसे सुंदर सुंदर निकट में आकर लीला वो करें। जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर चले गए मथुरा और फिर मथुरा से द्वारका, उनकी लीलाएं जारी रहीं। द्वारका में आकर श्री कृष्ण ने एक साधारण गृहस्थ की तरह, एक साधारण राजा की तरह, एक पुरुष की तरह, मनुष्य की तरह व्यवहार किया। लेकिन बीच बीच में अचानक वो ऐसे अद्भुत लीलाएं करते थे केवल ये दिखाने के लिए कि देखो मैं मनुष्य समाज में उठता बैठता हूं, खाता पीता हूं, बोलता घूमता फिरता हूं, और ऐसे प्रतीत होता है कि मैं भी एक साधारण मनुष्य की तरह हूं, लेकिन ये मत समझना कि मैं एक साधारण मनुष्य हूं। इसलिए वो ऐसे लीला करते थे जिससे कि लोग बिल्कुल आश्चर्यचकित रह जाते थे। और फिर इतिहास में ऐसे लीलाओं का वर्णन शास्त्रों में बड़े बड़े संत पुरुषों ने किया है, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, हालांकि श्री कृष्ण उनके भतीजे लगते थे संसार के रिश्तों की दृष्टि से देखा जाए तो, लेकिन फिर भी माता कुंती अच्छी तरह से जानती थी कि श्री कृष्ण केवल उनके भतीजा बनने की लीला कर रहा है, नाटक कर रहा है, वैसे तो ये स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से सुंदर प्रार्थना किए। ये प्रार्थनाएं श्रीमद् भागवत ग्रंथ में आती हैं। प्रसंग ये हुआ कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था और सारे कुरु कौरवों की सेना खत्म हो चुकी थी, केवल चार पांच ही लोग बच गए थे, उनमें से द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा था। अश्वत्थामा को बहुत गुस्सा था क्योंकि द्रोणाचार्य का वध भी हुआ था, द्रोणाचार्य की हत्या हुई थी। तो अश्वत्थामा ने सबसे पहले द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या की और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और फिर द्रौपदी ने अश्वत्थामा को क्षमा कर दी। उसके बाद में अश्वत्थामा का क्रोध शांत नहीं हुआ, पुनः अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा। उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी, उसके गर्भ में एक बच्चा था जो कि पांडवों का आखिरी वंशज था, और सारे युधिष्ठिर महाराज के जो भी वंशज थे वो सब कुरुक्षेत्र के युद्ध में मर गए थे, केवल ये अकेला बच्चा रह गया था। और इसलिए अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र इस बच्चे के ऊपर छोड़ दिया। और इस समय श्री कृष्ण जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले से ही पांडवों के संग में रहे और युद्ध के समाप्ति में भी थोड़े समय तक उनके पास रहे, उनके पास उत्तरा दौड़ती हुई आई त्राही त्राही मचाकर। उस समय कृष्ण ने समझ लिया कि यह वास्तव में अश्वत्थामा की चाल है। कृष्ण भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को खत्म कर दिया और स्वयं अपने आप को विस्तृत करके उत्तरा के गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया और गर्भ के भीतर जो बच्चा था उसको बचाया। आगे चलकर यह बच्चे का नाम परीक्षित हुआ और ये राजा परीक्षित को शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत ग्रंथ सुनाया, जो सर्वोच्च ग्रंथ है इस सारे ब्रह्मांड में। तो कृष्ण भगवान वहां रहे हस्तिनापुर में, इंद्रप्रस्थ में थोड़े दिन के लिए। कई महीने हो चुके थे कि कृष्ण ने द्वारका में अपने रिश्तेदारों को देखा नहीं था, तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मुझे वापस अभी द्वारका जाना होगा, वहां मेरे सारे रिश्तेदार मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो पांडव, माता कुंती इत्यादि बड़े दुखी हुए, क्योंकि कृष्ण उनके प्राण धन थे। ये पांडव भी कोई साधारण क्षत्रिय नहीं थे, ये भी भगवान के नित्य पार्षद हैं। जब भी भगवान श्री कृष्ण अलग अलग ब्रह्मांडों में प्रकट होते हैं अपनी लीला दिखाने के लिए, तो ये पांडव और ब्रजवासी अवश्य भगवान श्री कृष्ण के साथ ही प्रकट होते हैं। जिस प्रकार से एक राजा या मंत्री जब कहीं जाता है तो अकेले नहीं जाता, साथ में अपने सारे सहायकों को लेकर जाता है, तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों से अलग नहीं किए जा सकते, भक्तों को साथ में लेकर प्रकट होते हैं भौतिक संसार में। तो भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते थे कि भगवान का संग छोड़ना नहीं चाहते थे। तो उस समय कुंती महारानी वहां पर आईं और उन्होंने सुंदर स्तुति की भगवान श्री कृष्ण, और इस प्रार्थना में कुंती महारानी ने धर्म के गूढ़ सिद्धांतों का वर्णन किया। कुंती महारानी कभी स्कूल कॉलेज में गई नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको सारा ज्ञान था। लेकिन आजकल के शिक्षित व्यक्ति भी साधारण तत्वों को नहीं जानते, ज्ञान को नहीं जानते, तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो खैर, कुंती महारानी बोलने लगी, माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। वो कहने लगे कि हे कृष्ण, साधारण जीवन में लोग आपको मेरा भतीजा मानते हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि वास्तव में आप केवल मेरे भतीजे नहीं, आप साक्षात भगवान हो। वास्तव में माया जवनक अच्छन्नम, माया के पर्दे की वजह से लोग आपको पहचान नहीं पा रहे हैं। आप जो कि अधोक्षज हैं, अधोक्षज का मतलब जो कि इन साधारण इंद्रियों से जाने नहीं जा सकते, जिनको पहचानने के लिए केवल भक्ति चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतह सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं कि जिस व्यक्ति के आंखों में भगवत प्रेम का अंजन लगाया हुआ है, केवल वही व्यक्ति मात्र सदैव भगवान श्री कृष्ण को देख सकता है अपने अंतःकरण में। तो कुंती महारानी बताने लगी कि वास्तव में आप तो स्वयं भगवान हो, अधोक्षज हो, अव्यय हो, आपका दिव्य शरीर कभी भी क्षीण नहीं होता, क्योंकि आप सच्चिदानंद विग्रह हैं, आपका दिव्य शरीर चिन्मय है, कभी इसका घटन नहीं होता है। और वैसे जो लोग मूढ़ हैं, अज्ञानी हैं, अलक्ष्य, आप उनके लिए अदृश्य हैं, क्योंकि उनके आंखों के सामने आपके माया का पर्दा है। इस बात को श्री कृष्ण भगवद गीता में भी बताते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजम अव्ययम्। वो कहते हैं कि मेरी माया शक्ति के प्रभाव से यहां जो अज्ञानी लोग हैं इस भौतिक संसार में, वो मुझे एक साधारण व्यक्ति समझते हैं। वो ये नहीं जानते कि मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, मैं तो परम सत्य हूं, मैं भगवान हूं। लोग ये नहीं समझते हैं, लोग सोचते हैं कि मैं भी उनकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूं। तो कुंती महारानी बताने लगी कि हे कृष्ण, नटो नाट्य धरो यथा, आप केवल ऐसे उस अभिनेता के समान हैं जो कि मंच पर आता है और अलग अलग भूमिका निभाता है, लेकिन लोग इस भूमिका में आपको पहचान नहीं सकते। मान लो कि आपका कोई मित्र कोई नाटक में भाग लेता है और कोई राजा का रोल करता है, तो हो सकता है कि आप उसे पहचाने नहीं, क्योंकि उसने वेश बदल लिया है। लेकिन जो व्यक्ति उसके बहुत करीब है, वो अच्छी तरह से उसे पहचानने आएगा, भले उसने वेश भी बदला क्यों ना हो। तो ठीक उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण जब यहां पर प्रकट होते हैं भौतिक संसार में, वो अपने लीला करते हैं, ये एक प्रकार का नाटक है। तो जो भगवान को जानते हैं वो भगवान की लीलाओं से भ्रमित नहीं होंगे, और जो माया के प्रभाव में है वो कभी भी माया भगवान श्री कृष्ण को जान नहीं पाएंगे, हर दृष्टि से भगवान की टीका करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ में लीला क्यों किया, वस्त्र हरण क्यों किया, उन्होंने द्रोणाचार्य को जयद्रथ को इस प्रकार से क्यों मार डाला, उन्होंने युधिष्ठिर महाराज से झूठ क्यों कहलवाया। जब हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जानने का प्रयास करते हैं बिना श्री कृष्ण को जानते हुए, तब ऐसे भ्रांतियां होती हैं। जब कुंती महारानी ऐसी प्रार्थना कर रही थी तो वह पूर्ण ज्ञान की अवस्था में थी, पांडव भी इसी तरह से पूरे ज्ञान की अवस्था में थे, लेकिन कौरव ऐसी अवस्था में नहीं थे। जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों के दरबार में आए या आने की तैयारी कर रहे थे, तो उस समय खबर पहुंच गई राजा धृतराष्ट्र को। राजा धृतराष्ट्र ने सारे मंत्रियों को और उनके पुत्रों को बुलाया, भीष्म, द्रोण, विदुर, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी सब वहां पर मौजूद हुए, और धृतराष्ट्र ने घोषणा की कि स्वयं श्री कृष्ण यहां हमारे अतिथि बनकर आने वाले हैं, पांडवों का संदेश लेकर आने वाले हैं, हमारा कितना अहो सौभाग्य है, तो श्री कृष्ण का स्वागत हमें बड़े अच्छे ढंग से करना चाहिए, धूमधाम से करना चाहिए। जब श्री कृष्ण आएंगे तो शरीर के साथ जो शहर के सारे निवासी हैं उनको शहर के बाहर उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए, और जब वो आएंगे तो हम उनको शानदार उपहार इत्यादि देंगे, उनको रथ देंगे, सोना, चांदी, हीरे, मोती, इस प्रकार से उनका स्वागत करेंगे, और दुशासन के महल में उसे ठहरवाएंगे, क्योंकि दुशासन का महल सबसे ऐश्वर्यशाली है। धृतराष्ट्र के हृदय में यह इच्छा थी कि अगर कृष्ण को उनके तरफ लिया जाए तो फिर कौरवों की जीत हो सकती है। विदुर अच्छी तरह से इस बात को पहचान गए, और विदुर ने कहा कि हे राजन, आप ये मत सोचिए कि पैसे के और ऐश्वर्य के लोभ से आप कृष्ण को जीत पाएंगे। विदुर बड़े विद्वान थे, सब कुछ जानते थे, हमेशा धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को सही उपदेश देते थे नीति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, और विदुर श्री कृष्ण को अच्छी तरह से जानते थे, भगवान के भक्त थे वो। तो उन्होंने कहा कि हे धृतराष्ट्र, भगवान को केवल धन का प्रलोभन नहीं देना, ये सब कुछ, ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड तो उनकी संपत्ति ही है, तो आपके थोड़े बहुत सोने चांदी, घोड़े, हाथियों से उनको क्या प्रलोभन कर सकते हो। वैसे आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हो, ये अच्छी बात है, ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य है, परंतु जो आपके हृदय में उद्देश्य है, जो भावना है, वो गलत है। मेरी राय में तो केवल आप श्री कृष्ण जो कहते हैं वो कीजिए। जब भीष्म देव ने यह सुना तो भीष्म ने भी हां में हां मिलाया और कहा कि अवश्य श्री कृष्ण को बुलाना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। दुर्योधन वहां उपस्थित था। दुर्योधन ने कहा कि वैसे श्री कृष्ण तो पांडवों के संग में रहेंगे, पांडवों के पक्ष को वो छोड़ने वाले नहीं है। आप जितना भी धन दो वो मानने वाले नहीं है, बल्कि धन देने की वजह से वो क्रोधित हो जाएंगे। भीष्म देव कहने लगे, कृष्ण भगवान क्रोधित नहीं होंगे, उनके लिए मान सम्मान अपमान सब एक ही है, परंतु आप जानते नहीं कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आपको वास्तव में केवल उनके आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण चाहते हैं कि युद्ध नहीं हो, और जो अन्याय अभी पांडवों के प्रति हो हुआ है उसको खत्म किया जाए, पांडवों को अपना राज्य लौटा दिया जाए। उस समय दुर्योधन को बहुत क्रोध आया और जोर से दुर्योधन कहने लगा कि मैं किसी भी हालत में मेरे राज्य को त्यागूंगा नहीं। जो गलती मेरे बचपन में मेरे पिता ने की थी वो गलती मैं नहीं करूंगा, किसी भी हालत में मेरे राज्य को नहीं त्याग करूंगा। मैं ये सोच रहा हूं कि जब यहां श्री कृष्ण आएंगे तो मैं उनको गिरफ्तार कर दूंगा, बंदी बना दूंगा, और फिर पांडवों को जब पता चलेगा कि श्री कृष्ण को मैंने गिरफ्तार किया है तो उनकी सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि श्री कृष्ण के बिना पांडव जी नहीं सकते हैं। वास्तव में इन शब्दों से दुर्योधन पांडवों की प्रशंसा कर रहे थे, वो बता रहे थे कि पांडवों के लिए श्री कृष्ण प्राण धन है, कृष्ण के बिना वो जी नहीं सकते हैं। वास्तव में सबसे बड़ी प्रशंसा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के भक्त ही ऐसे भगवान से इतना प्रेम करते हैं। तो दुर्योधन का यह प्रस्ताव सुनकर हाहाकार मच गया सारे सभा में। द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, यहां तक कि धृतराष्ट्र भी दुर्योधन को टोकने लगे। धृतराष्ट्र बड़ी जोर की आवाज में बोलने लगे, अरे दुर्योधन, तुम कितने मूर्ख हो, क्या तुमने व्रत लिया है हमारे सारे वंश का नाश करने के लिए? क्या तुम नहीं जानते कि कृष्ण के साथ में तुम अगर ऐसे हरकत करने का प्रयास करोगे तो बहुत जल्दी तुम खत्म हो जाओगे। उस समय विदुर वहां खड़े थे। विदुर ने कहा कि अरे दुर्योधन, तुम्हारी मूर्खता की कोई सीमा नहीं है, तुम नहीं जानते कि अगर कृष्ण के सामने तुमने ऐसे हरकत की तो तुम्हारा ऐसे अंत होगा जैसे कि कीड़ों का जबकि वो अग्नि में प्रवेश करते हैं। भीष्मदेव कहने लगे, दुर्योधन तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि एक छोटा बच्चा, अगर छोटा बच्चा अग्नि के साथ खेलेगा तो क्या परिणाम होगा? वही परिणाम दुर्योधन का होगा। तो इस प्रकार से सभी लोगों ने दुर्योधन को टोका, लेकिन दुर्योधन के हृदय में इतना अहंकार, इतना द्वेष, इतना क्रोध था कि ऐसे भरी सभा में जहां वरिष्ठ कुरुवंश के लोग उपस्थित थे वहां भरी सभा में से उठकर चले गए बाहर। दुर्योधन ने पहले से योजना बनाई थी कर्ण, शकुनी और दुशासन के साथ में, और उन्होंने सोचा था तीनों ने कि सभा चाहे माने या न माने, हम कृष्ण को गिरफ्तार करने वाले हैं। उधर जब दुर्योधन बाहर चला गया तो कृष्ण शहर के पास में आ गया, हस्तिनापुर के बाहर। तो सारे जो कुरुवृद्ध थे और सारे शहर के निवासी उनका स्वागत करने के लिए गए। उधर दुर्योधन अपनी योजना बना रहा था, और जब श्री कृष्ण आए, धृतराष्ट्र से मिले और बाद में विदुर के घर में गए, वहां कुंती महारानी से मिले। जब से युद्ध हुआ था उसके पहले से ही कृष्ण ने माता कुंती को देखा नहीं था। माता कुंती बड़ी प्रसन्न हुई कृष्ण को देखकर, लेकिन बड़े शोकग्रस्त थी, क्योंकि वो अपने पुत्रों के लिए और द्रौपदी के लिए बहुत शोक कर रही थी कि इतना अत्याचार अन्याय हुआ है उनके प्रति। और कृष्ण से कहने लगे कि मैं सारे मेरे पुत्रों के अपमान को सहन कर सकती हूं, लेकिन द्रौपदी के साथ में जो भरी सभा में अपमान हुआ है वो मेरे लिए असहनीय है। आपके होते हुए ये कैसे हुआ मैं समझ नहीं सकती, लेकिन फिर भी मैं जानती हूं कि आप तो परम सत्य हैं, अवश्य कोई योजना आपकी है। कृष्ण ने कुंती महारानी को शांत किया और फिर दुर्योधन के दरबार में गए, जहां दुर्योधन ने उनको निमंत्रण दिया था, उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्योधन ने बड़े अच्छे ढंग से कृष्ण का स्वागत किया, चरणों को धोए, गाय एक दान में दी, पूजा की, लेकिन यह सब ढोंग था। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, सबके हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में बैठे हुए हैं श्री कृष्ण। इसलिए तुरंत वो पहचान गए कि दुर्योधन के हृदय में क्या विचार चल रहा है। जब दुर्योधन ने पूजा इत्यादि की श्री कृष्ण की, तो फिर कृष्ण के सामने एक प्रस्ताव रखा कि हे कृष्ण, हम आपको दुशासन के महल में ठहरवाना चाहते हैं और वहां आप हमारे 56 भोग को स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने साफ इनकार कर दिया, दुर्योधन से कहा, नहीं, मैं तुम्हारे भोग को स्वीकार नहीं कर सकता। तो दुर्योधन ने कहा, ऐसा क्यों? वैसे हम भी आपके इतने ही निकट के सगे संबंधी हैं जितने के पांडव हैं, तो पांडवों से आप इतना प्रेम करते हैं, लेकिन हमसे क्यों नहीं करते? तो कृष्ण ने जवाब दिया कि देखो दुर्योधन, मैं सबसे प्रेम करता हूं, लेकिन मैं अब यहां एक दूत बनकर आया हूं पांडवों का, और पांडवों का दूत बन के जब मैं आया हूं, तो जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण नहीं होता, तब तक मैं जिस जगह में संदेश देने के लिए आया हूं, उस जगह में मैं भोजन नहीं ग्रहण कर सकता। तो दुर्योधन कहने लगा कि अरे कृष्ण, चाहे आपकी बात स्वीकार हो या न हो, लेकिन हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, तो कृपा करके हमारे अतिथि बनिए, हमसे ऐसे हमारी सेवा को ठुकराइए मत। तो कृष्ण बोलने लगे कि देखो दुर्योधन, किसी के घर में भोजन केवल दो अवस्थाओं में ग्रहण किया जाता है, जब प्रेम होता है, या तो फिर जब व्यक्ति बहुत पीड़ित होता है। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं है, मैं जानता हूं, और दूसरी बात, मैं भी पीड़ित नहीं हूं, तो फिर मैं तुम्हारे घर में क्यों आऊं भोजन लेने के लिए। और ये कहकर कृष्ण भगवान वहां से चले गए। दुर्योधन वहां गुस्से से गुरगुरा रहे थे, लेकिन क्या कर सकता दुर्योधन। और फिर कृष्ण भगवान विदुर के घर में गए। विदुर हालांकि राजा धृतराष्ट्र के भाई थे, लेकिन दासी पुत्र थे, इसीलिए उसी घर में, उसी महल में नहीं रहते थे, उनके लिए अलग से निवास स्थान बनाया गया था। और श्री कृष्ण ने विदुर के घर में जाकर भोजन ग्रहण किया, क्योंकि विदुर उनके शुद्ध भक्त थे। इसलिए एक कवि ने भजन लिखा है, दुर्योधन का भोग न खायो, रूखा शाक विदुर घर खायो, ऐसे प्रेम पुजारी राधे, श्याम श्याम श्याम, केशव कलिमल हारी राधे, श्याम श्याम श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे, श्याम श्याम श्याम। तो दुर्योधन का भोग नहीं खाया, हालांकि 56 भोग अर्पण किया था, बड़े बड़े महलों में शानदार स्वागत किया था दुर्योधन ने कृष्ण का, लेकिन विदुर के घर में जाके प्रेम का रूखा शाक सब्जी, साधारण दाल रोटी खाई। इसका मतलब है कि भगवान हमारे ऐश्वर्य से प्रसन्न नहीं होते हैं। भक्ति कोई भी कर सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः, कि हे अर्जुन, जो मुझे भक्ति भाव से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, मैं उसे आनंद से स्वीकार करता हूं। इसका मतलब है कि भगवान भक्ति स्वीकार करते हैं। हम जो भगवान को अर्पण करते हैं, चाहे वो पत्र हो, पुष्प हो, पैसा हो, जो भी कुछ हो, इन चीजों की कमी भगवान के पास नहीं है। भगवान तो सच्चे मालिक हैं सब चीजों के, लेकिन भगवान क्या है, ऐसे प्रेम पुजारी राधे श्याम श्याम। भगवान तो उनके भक्तों के प्रेम के भक्ति के भूखे प्यासे हैं। उनको विदुर के घर में प्रेम मिला, क्योंकि विदुर उनके भक्त थे तो वो वहां पर चले गए। और फिर अगले दिवस में जब प्रातः काल में श्री कृष्ण उठे तो दुर्योधन विदुर के घर के सामने हाजिर हुए। हे कृष्ण, सारी सभा में राजा धृतराष्ट्र, द्रोण, भीष्म, कृपा इत्यादि सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृष्ण भगवान दूत बनकर आए थे तो कौरव कुल में सभी लोग सुनना चाहते थे कि कृष्ण क्या बोलना चाह रहे हैं। तो कृष्ण भगवान ने अपने प्रातःकाल के कार्य पूरे कर दिए और फिर अपने रथ में सवार होकर सात्यकी और विदुर के साथ में धृतराष्ट्र के दरबार में उन्होंने प्रवेश किया। जब वहां पर अंदर आए, भरी सभा थी, कृष्ण का बड़े अच्छे तरह से स्वागत हुआ। कृष्ण भगवान वहां पर एक अच्छे सिंहासन पर बैठे राजा धृतराष्ट्र के बिल्कुल पास में, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने अपना संदेश आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि देखो हे राजा धृतराष्ट्र, अभी मामला केवल आपके और मेरे हाथों में है। अगर हम दोनों कुरुवंश का नाश चाहते हैं तो फिर हमें ये युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए अनुमति देनी चाहिए। अगर आप इस वंश को बनाए रखना चाहते हैं तो फिर हमें ये युद्ध बंद करना चाहिए। आप आपके पुत्र दुर्योधन को समझाइए और मैं पांडवों को समझाता हूं। पांडव मेरी बात को अवश्य मानेंगे। अगर आपने जोर किया तो दुर्योधन भी आपकी बात को मानेगा। और इस प्रकार श्री कृष्ण ने बहुत अच्छा भाषण दिया, जिसमें उन्होंने समझाया कि अगर युद्ध हो जाता तो फिर पांडवों की जीत निश्चित थी। इस प्रकार से बोलते बोलते जब सारे वहां के जो उपस्थित सदस्य थे बहुत ही प्रभावित हुए, लेकिन दुर्योधन ने एक नहीं मानी। उस समय दुशासन, जो कि दुर्योधन का छोटा भाई था, जो कि बड़ा दुष्ट भी था, उसका मन भी प्रभावित हो गया और वो कहने लगा कि अरे दुर्योधन, अगर तुमने शांति का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो हम सब कौरव तुम्हें बांध देंगे और युधिष्ठिर के सामने हम तुम्हें ले जाएंगे। तो इस समय दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया और उठकर वहां से चला गया। लेकिन फिर से आए जब धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाया, और आने के बाद सभी लोग दुर्योधन को समझाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने कहा कि नहीं, मैं अवश्य इस राज को त्यागूंगा नहीं। उस समय सारे जो वहां के उपस्थित ऋषि मुनि थे वो भी कृष्ण की बात में हां मिलाने लगे। और वहां जो उपस्थित ऋषि मुनि थे उनमें से परशुराम ऋषि भी थे। परशुराम तो भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। परशुराम बोलने लगे कि अरे दुर्योधन, मैं तुम्हें एक बहुत प्राचीन काल की कहानी बताता हूं, कथा। ऐसा हुआ कि एक राजा था। ये राजा बड़ा घमंडी था, बहुत शक्तिशाली था, और ये शक्ति की वजह से उसका अहंकार बहुत बढ़ गया। सारे प्रतिद्वंदियों को उसने हरा दिया था। कोई ऐसे व्यक्ति नहीं था सारे विश्व भर में जो कि उसका सामना कर सकता था। और वो हमेशा लोगों को पूछता था कि मेरा सामना करने वाले कौन योग्य व्यक्ति रह गया है सारे पृथ्वी में। तो उस समय उन्होंने सुना कि नर और नारायण ऋषि बद्रिक आश्रम में तपस्या कर रहे हैं, वो बहुत शक्तिशाली हैं और वही आपका केवल सामना कर सकते हैं। तो बड़े क्रोधित होकर ये राजा वहां पर गया और नर ऋषि के सामने आया और कहने लगा कि मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं। नर ने कहा, हम दोनों तो ऋषि हैं, हमारा काम युद्ध करना नहीं है, हमें शांति से अपनी तपस्या करने के लिए छोड़ दो। तो उस राजा ने एक बात नहीं मानी। तो नर ने कहा, ठीक है, अगर तुम युद्ध ही करना चाहते हो तो ठीक है, जाओ तुम्हारी सेना को लेकर आओ। वो राजा अपनी सेना को लेकर आया और पूरे बल से नर और नारायण ऋषियों के ऊपर आक्रमण करना आरंभ कर दिया। तो उस समय नर ऋषि ने क्या किया, केवल थोड़े घास के तिनके उठाए, थोड़े मंत्रों का उच्चारण किया और उस सेना की ओर फेंक दिया। उस मंत्र बल से ये घास के तिनके बहुत ही जहरीले धार वाले अस्त्र बन गए और ये उड़कर सेना के जो भी सैनिक थे उनका नाक और उनके कान काट दिए और उनके ऊपर हमला ऐसे किया कि जो राजा भागते हुए नर ऋषि के सामने आया और दंडवत करके क्षमा याचना की। तो परशुराम कहने लगे कि अरे दुर्योधन, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी भी ऐसी ही दशा होगी, क्योंकि वही नर अभी अर्जुन है, अर्जुन के रूप में आया है और नर से अधिक शक्ति नारायण की है, नारायण की शक्ति कोई सीमा नहीं है और ये नारायण तुम्हारे आंखों के सामने यहां खड़े हैं, यही कृष्ण। इसलिए तुम समझ लो कि कृष्ण की बात को तुम्हें मानना चाहिए। जब दुर्योधन बाहर चले गए थे पहली बार तो कृष्ण और उनके साथी सात्यकी को पता चल गया था कि दुर्योधन अपने पूर्व की हुई योजना को शायद अभी करने की सोच रहा है, जो कि कृष्ण को गिरफ्तार करना। सात्यकी ने कृष्ण के कान में जाके कहा कि शायद अब दुर्योधन की ये चाल है। कृष्ण हंसने लगे, मेरे बारे में चिंता नहीं करो, मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूं, लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र के मत का मत क्या है वो जरा पूछ लो। तो सात्यकी ने ऊपर उठकर धृतराष्ट्र से भरी सभा में कह दिया कि हे राजन, अब ऐसे लगता है कि दुर्योधन कृष्ण को गिरफ्तार करने के लिए चेष्टा करने वाला है। उसे ऐसे इतना मूर्ख बनने के लिए आप प्रेरित मत करो, उसे दंडित कर दो। अगर दुर्योधन ने यह हरकत की तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बहुत लोगों ने दुर्योधन को समझाया लेकिन दुर्योधन ने किसी की बात नहीं मानी और अंततः जब दुर्योधन सामने आया तो स्वयं श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अगर चाहूं तो इन सबको एक क्षण में खत्म कर सकता हूं, लेकिन फिर सब लोग मेरी निंदा करेंगे, इसलिए मेरे लिए उचित नहीं है। इनका वध तो केवल पांडवों के हाथ अर्जुन के हाथ होना है, इसलिए मैं इनकी हत्या नहीं कर रहा हूं। तो हे दुर्योधन, ये देख लो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ में सारे देवता हैं, यहां पांडव हैं, अंधक वृष्णि भोज वंश के सारे सैनिक मेरे पीछे हैं। पीछे तो कोई नहीं था। तो दुर्योधन को बड़ा क्रोध आया। पहले से योजना की हुई थी, दुर्योधन के सैनिक बाहर खड़े हुए थे। दुर्योधन ने जोर से आवाज लगाई, गिरफ्तार करो इसे। तो सारे सैनिक अचानक अंदर भाग कर आए और अपने अस्त्रों को हाथ में ऊपर धारण किए हुए कृष्ण की ओर वो आक्रमण करने लगे। कृष्ण भगवान हंसे, कृष्ण को बड़ा मजा आ रहा था। और कृष्ण ने क्या किया, उस समय अचानक अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, मानो कि उनके शरीर से बिजली निकल रही थी और साथ साथ में उनके शरीर के अलग अलग अंगों से सारे देवता उत्पन्न हुए। उनके कपाल से ब्रह्मा जी आए, उनके कपोल से शिव जी आए और उनके भुजाओं से लोकपाल आए। अलग अलग अंगों से अलग अलग सारे जो देवता हैं वो सारे प्रकट हुए, अस्त्र से शस्त्र धारण किए हुए, और उनके दो आंखों से बलराम और अर्जुन बाहर आए और फिर उनके पीछे युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव और अन्य सारे जो भोज अंधक वृष्णि वंश के सैनिक वहां आ गए। और भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया। वहां उपस्थित जो लोग थे इतने घबरा गए, इतने भयभीत हो गए कि सबने अपनी आंखें बंद कर दी। असहनीय दृश्य था ये। सबके रोंगटे खड़े हो गए। केवल भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और संजय इस दृश्य को देख पाए और वो आंख खोल के देख रहे थे। और उधर संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि ऐसे हुआ है, कृष्ण ने अपना विराट रूप प्रदर्शित किया है। धृतराष्ट्र भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से दोनों वो अंधे थे। तो धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की कृष्ण से कि हे कृष्ण, आप तो सारे जगत के कल्याण करने वाले हैं, कृपा मुझे वो दृष्टि दीजिए ताकि मैं ये दृश्य देख सकूं। तो कृष्ण ने कहा तथास्तु। उस थोड़े क्षणों के लिए धृतराष्ट्र को दर्शन की प्राप्ति हुई, भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखा। जब देखा तो धृतराष्ट्र के रोंगटे भी खड़े हो गए। और केवल थोड़े क्षणों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह रूप दिखाया और फिर इसको फिर से अपने आप समेट लिया। तो उस समय हाहाकार मच गया सारे सभागृह में, और श्री कृष्ण ऐसे इधर उधर देखने लगे कि मानो कुछ हुआ ही नहीं है। तो हल्की मुस्कान अपने चेहरे पर रखकर सात्यकी और विदुर को साथ में लेकर वो दरबार के बाहर चले गए। उधर दुर्योधन कांपने लगा, ये क्या मैंने देखा। लेकिन फिर भी इतना सब होने के बाद भी दुर्योधन ने अपने इच्छा को त्यागा नहीं। दुर्योधन पहचान नहीं पाए कृष्ण को, हालांकि कृष्ण भगवान ने विराट रूप दिखाया, फिर भी दुर्योधन सोच रहा था कि मैं अपने राज को त्यागूंगा नहीं, यहां तक कि सुई के नोक के ऊपर जितनी जमीन है उतना भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। कई बार लोग कहते हैं भगवान कहां है, मुझे भगवान दिखाओ। दुर्योधन ने भगवान देखा, भगवान उसके सामने थे, भगवान से बातचीत की कितनी बार दुर्योधन ने। बचपन से श्री कृष्ण को देखते आया था दुर्योधन, लेकिन पहचान नहीं पाया। बल्कि जैसे एक सांप का जहर बढ़ जाता है, वैसे ही दुर्योधन के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या और द्वेष बढ़ते जा रहा था, कम नहीं हुआ। तो केवल भगवान का स्वयं दर्शन करने से क्या लाभ होगा, जब तक कि हमारे हृदय में भक्ति भावना नहीं है, श्रद्धा नहीं है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण वहां से चले गए और दुर्योधन की इच्छा दुर्योधन इच्छा पूर्ण करने में असफल रह गया। तो इस प्रकार से दुर्योधन ने कृष्ण को देखते हुए भी नहीं देखा, पश्यन्नपि न पश्यति, जान नहीं पाए। लेकिन जो लोग भगवान श्री कृष्ण की लीला भक्तों के संग में आकर श्रवण कीर्तन करते हैं, वो भगवान को अच्छी तरह से जान सकते हैं। जब पांडव वनवास में थे, करीब करीब 10-11 साल बीत चुके थे, 4 साल वो यक्षों के बीच में कुबेर के राज में रहे थे और फिर से काम्यक वन में आए। जब कृष्ण भगवान जो कि उस समय द्वारका में थे, उन्हें पता चला कि पांडव फिर से वन में आ गए हैं, तो उन्होंने सोचा कि चलो जाके उनको मिल लेते हैं। तो सत्यभामा को लेकर श्री कृष्ण काम्यक वन में पांडवों के पास पहुंच गए। पांडवों को बड़ा आनंद हुआ कृष्ण को देखकर। आलिंगन सत्यभामा देवी ने भी देखकर वो बड़े आश्चर्यचकित हो गईं। और उस समय थोड़ी बहुत बातचीत हुई कृष्ण और पांडवों के बीच में, और फिर उन्होंने देखा कि वहां पर एक महान ऋषि आकाश पथ से होकर यहां पर आ रहे हैं। उनका नाम है मार्कंडेय ऋषि। मार्कंडेय ऋषि की विशेषता यह है कि वो करोड़ों करोड़ों साल इनकी उम्र थी, लेकिन वो केवल एक 16 वर्ष के नवयुवक के तरह दिखाई पड़ रहे थे। जब से भगवान ने सृष्टि की रचना की थी, उसके पहले से मार्कंडेय ऋषि जीवित थे और भगवान का विशेष वरदान मिला था उनको। जब मार्कंडेय ऋषि आए, उनके पीछे पीछे नारद मुनि भी आए, नारायण नारायण कहते हुए। तो कृष्ण भगवान और पांडवों ने अच्छे ढंग से दोनों ऋषि मुनियों का स्वागत किया और उनको अच्छे आसन देकर बिठाया। नारद मुनि ने भी कहा कि हे मार्कंडेय ऋषि, हम भी आपसे कथा सुनना चाहते हैं, कुछ हमें ऐसे पौराणिक कथाएं सुनाइए जिससे हम लाभान्वित हो सकें, हमारी भक्ति बढ़ सके। तो उस समय मार्कंडेय ऋषि ने कथा बताना आरंभ किया। सुंदर सुंदर कथाएं बताई उन्होंने पुराणों से, क्योंकि इतने करोड़ों सालों से वो जीवित थे कि सारे इतिहास को वो जानते थे। युधिष्ठिर महाराज फिर पूछने लगे कि हे ऋषि, हे मुनिवर, कृपा करके मुझे ये बताइए कि भाग्य ये क्या वस्तु है। हम तो पुण्य के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन हमारी ये दशा, हमारा राज्य हमसे छीन लिया गया है और दुर्योधन जैसा दुष्ट व्यक्ति अभी कि कर्मों का फल हमें इस जीवन में भी मिल सकता है, अगले जीवन में भी मिल सकता है। ऐसे कई लोग होते हैं जिनको अपने पापों का या अपने कर्मों का फल इसी जीवन में मिलता है। अगर कोई बहुत धनी व्यक्ति है लेकिन केवल भोग में अपना जीवन बिताता है तो अगले जीवन में उसे बहुत दुख मिलेगा। कोई तपस्वी वैरागी साधु है तो उसे अगले जीवन में बहुत सुख मिलेगा। जो धर्म पारायण व्यक्ति है, जो धर्म के अनुसार अपना जीवन बिता रहा है, उसे इस जीवन में और अगले जीवन में दोनों में सुख मिलेगा। और जो पापी व्यक्ति है उसे न इस जीवन में न अगले जीवन में सुख मिल सकता है। और हे युधिष्ठिर महाराज, हम विद्य विहार विद्यापीठ के कुलपति श्री विजेंद्र शर्मा जी का स्वागत करते हैं। बहुत आभारी हैं कि आप यहाँ हमारे बीच कृष्ण जन्म को मनाने के लिए आए हैं। आसन आसन चलो। तो इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि बताने लगे कि हे पांडव, हे युधिष्ठिर, ये समझ लो कि जब हम कर्म करते हैं हमारी इच्छाओं के अनुसार हम कर्म करते हैं और हमारी इच्छाएं हमारे सूक्ष्म शरीर में निवास करते हैं, और जब आत्मा इस स्थूल देह को त्यागता है तब सूक्ष्म देह उसे दूसरे देह में ले जाता है, और इसलिए सारे पूर्व जन्म की इच्छाएं सब साथ में आती हैं। इसलिए यमराज इन सब चीजों का इन चीजों की गणना करते हैं और किसको क्या फल मिलना चाहिए भगवान की कृपा से वो सही ढंग से देने लगते हैं। इसलिए हे पांडव, आप चिंता नहीं करना, आप सब धर्म परायण हैं, आपको किसी भी बात की चिंता नहीं है। और जहां तक दुर्योधन है, क्योंकि उसके पूर्व पुण्यों के अनुसार उसे थोड़ा भोग करने को मिल रहा है, लेकिन अभी इतने सारे पाप कर रहा है कि अवश्य उसका विनाश बहुत ही करीब है। और इस प्रकार से मार्कंडेय ऋषि ने एक कथा बताना आरंभ किया। उन्होंने कहा कि बहुत साल पहले की बात है, जब प्रलय का समय हुआ तो जल बढ़ते जा रहा था, बढ़ते जा रहा था। ब्रह्मा जी के रात्रि में जो तीन लोक हैं वो तीनों पानी के नीचे आ जाते हैं, केवल जो ब्रह्मांड के ऊपर के लोक हैं जैसे महर लोक, जन लोक, तप लोक, वही मात्र रह जाते हैं, अन्य सारे लोक प्रलय में डूब जाते हैं। तो इस जल के प्रवाह में मार्कंडेय ऋषि भी तैर रहे थे, उनको वरदान मिला था लंबी आयु का, इसलिए प्रलय के समय भी उनकी मृत्यु नहीं हुई। मार्कंडेय ऋषि कहने लगे कि प्रलय के जल के ऊपर जब मैं था तो अचानक मैंने एक अद्भुत दृश्य देखा। थोड़े दूर पर एक कमल पत्र था और उसके ऊपर एक बहुत सुंदर बालक था जो सांवले रंग का था, जिसकी बहुत मीठी मुस्कान थी, जिसके कमल नयन थे, मोतियों जैसे दांत थे, काले घुंघराले बाल थे, बालों में मोर पंख, और वो बच्चा अपने चरण कमलों के अंगूठे को चूस रहा था। मैंने सोचा कि ये कौन है, ये बच्चा असाधारण बच्चा, इतना सौंदर्य इसका
और ये प्रलय के जल में कहां से आ गया, ये कौन है? उस समय तैरते हुए मैं वहां पर गया उस बालक के पास में, और वो बालक मुझसे बात करने लगा, कहने लगा कि हे वत्स, तुम मेरे भीतर अभी आ जाओ, क्योंकि अभी प्रलय का समय है। और अचानक जब उस बालक ने सांस ली तो मैं उनके शरीर के भीतर चला गया, और उस शरीर के भीतर उस बच्चे के पेट में मैंने क्या देखा? मैंने देखा अनंत कोटि ब्रह्मांड वहां है, सारे तारे नक्षत्र ग्रह सब वहां दिखाई पड़ रहे हैं, केवल इस बालक के पेट के भीतर। और वहां पर इस ब्रह्मांड को मैंने देखा, इस ब्रह्मांड के भीतर जो पृथ्वी लोक है वो मैंने देखा, और स्वयं अपने आप को मैंने देखा, और जो भी कुछ चल रहा है यहां के पहाड़ सागर समुद्र नदियां शहर सब मैं देख सका। और लंबे समय तक मैं यहां रहा, और इस बालक ने मुझसे कहा कि हे मार्कंडेय, जब तक कि पुनः सृष्टि की रचना नहीं होती है तुम यहीं पर मेरे भीतर निवास करना, और बहुत ही जल्द जब सृष्टि के सृजन का रचना का समय आ गया तो पुनः मैं बाहर आ गया। यह है उस बालक की दिव्य शक्ति, ये तो स्वयं नारायण श्री हरि थे। और हे दुर्योधन, हे पांडव, आप जान लो अच्छी तरह से कि वास्तव में यही कृष्ण अभी आपके बीच में यहां पर है, इसलिए आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। वही बालक जो कि कमल पत्र के ऊपर जिसको मैंने देखा, वही बालक अब तुम्हारा साथी है। मैंने इनको अच्छी तरह से पहचान लिया है, क्योंकि इन्होंने ही मुझे वरदान दिया था कि मेरी स्मृति शक्ति हमेशा बनी रहेगी और मेरी लंबी आयु रहेगी। इसीलिए वास्तव में आप लोगों की विजय निश्चित है। भगवत गीता में श्री कृष्ण बताते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मतिर मम। वो कहते हैं कि जहां पर श्री कृष्ण हैं जो कि योगेश्वर हैं, जहां पे उनके भक्त अर्जुन हैं जो कि गांडीव बाण धारण किए हुए हैं, वहां पर निश्चित रूप से जीत होगी, वहां पर नीति होगी, वहां पर ऐश्वर्य होगा, सौंदर्य होगा, तेज होगा, ये निश्चित रूप से जान लो। ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे थे। भगवत गीता का आखिरी श्लोक है तो मार्कंडेय ऋषि ने भी बताया कि हे अर्जुन, आप और कृष्ण जहां हैं तो यहां पर कौन से भय की बात है, विजय तो आपके लिए निश्चित है। तो इसलिए पहचानो ये कृष्ण को, ये वही नारायण है जिनका दर्शन मैंने कमल पत्र के ऊपर किया था। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण को साधारण तो लोग नहीं पहचानते हैं, इसलिए अक्सर उनकी लीलाओं को भी वो गलत दृष्टि से देखते हैं। हमने जो छोटी सी सुंदर नाटिका देखी, लघु नाटिका पहले, उसमें हमने देखा कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति की तरह, एक साधारण बच्चे की तरह लीला कर रहे थे, माखन को चोरी कर रहे थे। तो हमारे जीवन की परिपूर्णता यह है कि हम उस भगवान श्री कृष्ण के ऐसे लीला में प्रवेश करके इसे समझ लें। भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने से हम वास्तव में भगवान के धाम में जा सकते हैं, अन्यथा हमें बारंबार ये संसार के चक्र में फंस कर रहना पड़ेगा। भक्त्या माम अभिजानाति या वान यश्चाश्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं गीता में कि केवल भक्ति से तुम मुझे जान सकते हो हे अर्जुन, और जब तुम मुझे जान जाओगे तो तुम अवश्य मेरे धाम में प्रवेश कर पाओगे। भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे अर्जुन, भक्ति मात्र से ही तुम मुझे जान सकोगे, पहचान पाओगे, ज्ञातुम, और जब तुम मुझे जान सकोगे, दृष्टुम तुम मुझे देख भी पाओगे, और उसके बाद में प्रवेशतुम तुम मेरे धाम में प्रवेश कर पाओगे। तो हम सब भगवान के धाम से आए हैं, हमें पुनः भगवान के धाम में लौट कर जाना है। इस भौतिक ब्रह्मांड के परे भगवान श्री कृष्ण का दिव्य धाम है, जिसमें कोई मृत्यु नहीं, कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई क्लेश नहीं, कष्ट नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। उसको वैकुंठ कहते हैं, इस जगत को कुंठ कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं इस ब्रह्मांड में, तो फिर वो हमारा मन आकर्षित करने के लिए यहां पर आते हैं। भगवान गीता में जो बोल रहे हैं, बोलते हैं कि मैं दुष्टों को नाश करने आता हूं, मैं धर्म की संस्थापना करने आता हूं, वो तो कोई भी कर सकता है, उनके दूत भगवान भेज सकते हैं, लेकिन स्वयं भगवान क्यों आते हैं? केवल अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, अपने भक्तों का हृदय आकर्षित करने के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। परित्राणाय साधुनाम, भगवान का यह उद्देश्य होता है। भगवान श्री कृष्ण केवल असुरों के वध के लिए नहीं आते, भक्तों का नाश, भक्तों को बचाने के लिए आते हैं। भगवान ने जब नरसिंह देव का रूप धारण किया, केवल हिरण्यकश्यप का वध करने नहीं आए, बल्कि प्रह्लाद को बचाने आए, प्रह्लाद को आनंद देने आए। यह होता है भगवान का उद्देश्य। आपने राजा अकबर का नाम अवश्य सुना होगा। राजा अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, अरे बीरबल, तुम्हारे धर्म में यह बताया जाता है कि भगवान अवतार लेते हैं दुष्टों का नाश करने के लिए, तो इतनी दूर से क्या उनको दुष्टों का नाश करने के लिए आना चाहिए? अपने भक्तों को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन इतनी दूर से स्वयं भगवान को आने की क्या जरूरत है? क्या भगवान इतने शक्तिशाली नहीं है कि अपने शक्ति मात्र से, अपने दूतों के माध्यम से वो अपने भक्तों को बचा नहीं सकते? तो बीरबल ने कहा, आपके सवाल का जवाब आपको सही समय पर मिल पाएगा। तो अकबर उस प्रश्न को भूल गए। थोड़े दिन बाद अकबर के मन में ये इच्छा हुई कि हम नौका विहार करें। यमुना जी में जाकर नौके में बैठ गए, और साथ में बीरबल और थोड़े और मंत्री थे। उस समय अकबर ने अपने छोटे से पोते को भी साथ में लिया था, छोटा बच्चा था, और वो भी नौके में आ रहा था। और बातचीत करते करते समय कैसे बीत गया अकबर राजा को नहीं पता चला। अकबर और बीरबल वार्तालाप में मग्न थे, और बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं रहा अकबर का। अचानक वो बच्चा जल में, नदी में गिर पड़ा। जब गिर पड़ा तो तुरंत जब अकबर ने देखा, उसी क्षण अकबर राजा ने छलांग मार दी पानी में, और बच्चे को उठा लाया और नौके में रख दिया। बाकी जो सैनिक थे इर्द गिर्द, वो भी कूद गए पानी में, लेकिन अकबर इतने तेजी से कूद गए कि अन्य सैनिकों ने पानी के आने के पहले ही अकबर ने बच्चे को बचा भी लिया था, नौके में रख भी दिया था। तो फिर अकबर कहने लगे, शुक्र है ऊपर वाले का कि हमारा पोता बच गया। तो बीरबल ने कहा, अरे बादशाह जी, आप ये बताइए, आप सारे हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आपके इतने सारे सेनापति, नौकर, चाकर, सैनिक हैं, तो आप क्यों कूद पड़े पानी में? सैनिकों को काम देना था करने के लिए, आपने ऐसा क्यों किया? तो अकबर सोच में पड़ गए, और फिर बीरबल ने कहा, आपके प्रश्न का जवाब मिला आपको, क्योंकि आप इस बच्चे से प्रेम करते हैं। आपने ये नहीं देखा कि मैं कितना बड़ा व्यक्ति हूं, मैं बादशाह हूं, राजा हूं, आपने ये नहीं देखा, आप तुरंत कूद पड़े, अपनी भी परवाह नहीं की आपने। ये है प्रेम का लक्षण। प्रेम में क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने परवाह नहीं करता, केवल जिस व्यक्ति से प्रेम करता है उसकी भलाई देखता है। तो ठीक उसी तरह से भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम पहम, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं मैं मेरे भक्तों के हृदय में निवास करता हूं और मेरे भक्त मेरे हृदय में निवास करते हैं। मेरे भक्त मेरे सिवाय किसी और को नहीं जानते और कुछ भी नहीं जानते, और मैं मेरे भक्तों के सिवाय कुछ भी नहीं जानता हूं। यह है भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में प्रेम का संबंध। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतस परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ये है मेरे भक्त, उनके भक्तों की परिभाषा करते हैं। भक्त कौन है? मच्चित्ता, जिसके चित्त में श्री कृष्ण समाये हुए हैं, जिनके लिए श्री कृष्ण प्राण धन है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम, परस्पर हमेशा भगवान श्री कृष्ण के बारे में ही बातचीत करते हैं। तुष्यन्ति च रमन्ति च, और केवल इसी में वो आनंद लेते हैं। ये है भगवान के भक्त। और क्योंकि भगवान के भक्त श्री कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं तो श्री कृष्ण भी उतना ही प्रेम करते हैं भक्तों से। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो इस प्रकार से बीरबल समझाने लगे कि हे राजन, जहां प्रेम का सवाल आता है भगवान आगे पीछे नहीं देखते हैं, अपने दूत को नहीं बेचते हैं, स्वयं प्रकट होते हैं यहां पर लीला करने के लिए। इस प्रकार से अकबर को यह उत्तर बहुत अच्छा लगा और हर बार की तरह कहने लगे कि बीरबल, हर बार की तरह तुमने मुझे हरा दिया है। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण है, भक्त वत्सल है, अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए यहां पर अवतार लेते हैं। और जब उनके भक्तों का प्रेम देखते हैं तो उनके भक्तों में विशेष शक्ति प्रदान करते हैं, जैसे कि अर्जुन को किया, जैसे कि भीम को किया। और जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, उस समय अर्जुन को पता चला कि मेरी शक्ति सब चली गई, वही श्री कृष्ण जिन्होंने मुझे सब शक्ति दी थी, जिनके बल के आधार पर मैं इन सब बड़े बड़े महारथियों को परास्त कर सका, वो श्री कृष्ण अब हमारे बीच में नहीं रहे और उनके जाने के साथ में मेरी शक्ति भी सब चली गई है। तो भगवान श्री कृष्ण को कोई कार्य संपन्न करना था यहां पर आकर, इसलिए उन्होंने अपने भक्तों को वैसे विशेष शक्ति प्रदान कर दी थी। और जब काम पूरा हो गया तो शक्ति भी वापस ले ली। तो इस प्रकार से भगवान के जो भक्त होते हैं उनको कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। कोई अनपढ़ भक्त भी क्यों ना हो, कोई साधारण सा गरीब भक्त भी क्यों ना हो, हमें जानना चाहिए कि इसने जब बहुत जन्मों से तपस्या की है, इसलिए उसे यहां भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का मौका मिल रहा है। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में इतनी शक्ति है कि चमत्कार, बड़े से बड़े चमत्कार हो सकते हैं। चमत्कार तो मनुष्य समाज में समझते हैं हम इनको, भगवान श्री कृष्ण के लिए तो कोई चमत्कार नहीं है। एक अकबर बीरबल की बात हो रही है तो और एक छोटी कहानी याद आई। आपने तानसेन का नाम सुना होगा, संगीत विशारद, नवरत्नों में सुते अकबर के दरबार में। तो इतना मधुर गाते थे कि अकबर ने कहा, अरे तानसेन, मैं तो तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, मुझे लगता है कि सारे ब्रह्मांड में तुम्हारे जितना अच्छा कोई गायन नहीं कर सकता। तो तानसेन ने कहा, नहीं, ये सच्ची बात नहीं है, मेरे से भी अच्छे गाने वाले एक व्यक्ति हैं। अच्छा, वो कौन है? वो है मेरे गुरु हरिदास जी। हरिदास जी कहां रहते हैं? वो वृंदावन में रहते हैं। तो अच्छा, तुम्हारे से अच्छा वो गायन करते हैं तो मैं उनका गायन सुनना चाहता हूं, तो क्या मुझे ले जाओगे? तो उस समय तानसेन ने कहा, लेकिन वो राजाओं के सामने गाते नहीं है। कहा, फिर भी मुझे ले जाओ। तो उस समय योजना बनाई अकबर और बीरबल ने, क्योंकि तानसेन ने बीरबल से जाके कहा था कि अब अकबर आकर हरिदास जी को सुनना चाहते हैं, और हरिदास जी कुछ भी बोल देंगे अगर तो फिर अपमान हो जाएगा राजा का, फिर क्या होगा। तो बीरबल ने कहा कोई बात नहीं, हम योजना बनाते हैं, तुम ऐसा करो, तुम जाकर हरिदास जी के शादी कमरे में जाना, प्रणाम करके तुम एक राग गाना शुरू करना, और जानबूझकर गलत गाना, कोई बेसुरा कुछ कर देना, गड़बड़ कर देना कुछ, और फिर हरिदास ये सुनेंगे, सहन नहीं कर पाएंगे, और फिर वो गाना शुरू करेंगे। मैं राजा को बाहर खिड़की के पास में बिठाता हूं। तो उस समय अकबर, तानसेन और बीरबल वृंदावन चले गए, और जैसे कि योजना बनी थी, तानसेन अपने गुरु के पास गए, और जब पहले की बातें थोड़ी बहुत हो चुकी थी, प्रेम की बातें वो जब समाप्त हो गए, तो फिर काम की बात हुई, चलो संगीत गात में थोड़ा गायन करते हैं, भजन करते हैं। तो तानसेन ने भैरवी राग गाना शुरू किया, लेकिन जानबूझकर कुछ गलत धुन, बेसुरा, और हरिदास कहने लगे, अरे रे 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 तानसेन, तुमने इतनी सार तालीम ली है मुझसे, ये गलती कैसे की तुमने। तो तानसेन ने कहा जरा आप गाइए ना। तो हरिदास गाना शुरू किया, भगवान श्री कृष्ण का भजन। हरिदास तो हरिदास थे, भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी का गुणगान नहीं करते थे। तो एक बार जब तान लगाई हरिदास जी ने, तो वो भाव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, ऐसे लगा कि बस चट्टानों के ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, भाव के चट्टानों में चढ़ते जा रहे हैं, भाव विभोर हो गए हरिदास जी, तानसेन भी अंदर खो गए उनके भक्ति संगीत में, और बाहर अकबर सुन रहे थे, वो भी खो गए संगीत में, मानो कि वो प्रेम के भक्ति के सागर में डूब गए हैं। अकबर ने कभी भक्ति क्या है जानी नहीं थी, लेकिन हरिदास के भजन को सुनकर उनका मन पिघल गया। वृंदावन के श्री कृष्ण के प्रति अकबर के हृदय में भी थोड़ा बहुत आकर्षण हो गया, और अपने आप को रोक नहीं पाए, पूरा एक घंटा सुने, और जब गायन समाप्त हो गया तो तुरंत कमरे के अंदर भाग के चले और दंडवत प्रणाम किया हरिदास के चरणों में। और हरिदास बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि अरे ये कौन है। तो तानसेन ने कहा ये तो बादशाह अकबर है। हरिदास ने कुछ नहीं कहा। उस समय राजा अकबर ने हरिदास से कहा, हरिदास जी, गुरु जी, आप ये बताइए कि आप जैसा गायन हमने कहीं ब्रह्मांड में नहीं सुना, लेकिन आपका शिष्य तानसेन आपकी तरह क्यों नहीं गा सकता है। हरिदास जी कहने लगे ये तो मेरे से अच्छा गाता है। लेकिन तानसेन बोलने लगे कि हे बादशाह, मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूं, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के लिए गाता हूं, लेकिन हरिदास वृंदावन के बादशाह के लिए गाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के जो स्वामी हैं उनके लिए गाते हैं, इसलिए उनके स्वर में, उनकी आवाज में जो माधुर्य है, जो मिठास है, जो भक्ति है, वो मेरे गले में नहीं आ सकती है, क्योंकि आप तो साधारण आदमी हैं, इंसान हैं, आप साधारण इस दुनिया के बादशाह हैं। और ये कितनी सच्ची बात है कि वास्तव में जब हम श्री कृष्ण के लिए हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान हमें अद्भुत शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ही सारे कार्यों को संपन्न करते हैं, भक्त केवल एक निमित्त हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, निमित्त मात्र भव सव्यसाचिन, मैंने इन सब का वध कर ही दिया है, तुम केवल निमित्त बनो हे अर्जुन और मेरे कार्य को संपन्न करो। तो इसी प्रकार से हमें श्री कृष्ण को अच्छी तरह से पहचानना चाहिए, श्री कृष्ण के लीलाओं को समझने के पहले श्री कृष्ण के तत्व को समझना चाहिए। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं वो मुझे पहचान नहीं पाते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा, जो मूढ़ लोग हैं वो मुझे पहचानते नहीं हैं, वो नहीं जानते कि मैं सारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी हूं, मालिक हूं। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण परम भगवान है, परम सत्य है, और उनके शरण में जाना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्यागो और केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो नहीं, मा शुचः। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के शरण में जाने से हमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। क्या होगा, हम भक्ति करेंगे तो समाज हमारी निंदा करेगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, हम वो देवी की पूजा करते थे, ये देवता की पूजा करते थे, तो अब कृष्ण के शरण में आएंगे तो वो देवी नाराज हो जाएंगी। भगवान क्या कहते हैं, मा शुचः, कोई डर नहीं, और अगर जाने अनजाने में भी कोई पाप हो भी जाए तो भगवान क्या करते हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि, मैं पापों से मुक्त कर दूंगा तुम्हें। इसलिए भगवत गीता का सार यही है, अंतिम उपदेश, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम ए वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, हमेशा मन ही मन में मेरा स्मरण किया करो, मेरा भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी उपासना आराधना करो, और ऐसे करने से तो निश्चित रूप से तुम मेरे पास लौट कर आओगे। भगवान श्री कृष्ण के पास लौट कर जाना हमारे जीवन का अंतिम उद्देश्य है, इससे बढ़कर और कोई कार्य हमारे जीवन में नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण को जानने के लिए, उनके सुंदर सुंदर लीलाओं को, कथाओं को समझने के लिए हमें भगवान के भक्तों के संग में आना चाहिए। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, जहां उनके भक्त गायन करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण नारद को उपदेश देते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ताः तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, मैं वहां रहता हूं जहां पर मेरे भक्त मेरा गायन करते हैं। यह स्वाभाविक है, जहां कोई व्यक्ति देखता है, सुनता है कि उसके बारे में बातचीत हो रही है तो वहां जाना पसंद करता है। अगर हम कहीं से गुजर रहे होते हैं और हमारे नाम लेकर कोई कह रहे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं, और हम समझ ले कि उंगली दिखाकर वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि हम वहां जाएं, क्या बात कर रहे हो मेरे बारे में, हम जानना पसंद करेंगे ना। तो उसी प्रकार से जब भक्त बैठकर श्री कृष्ण के बारे में बातचीत करते हैं तो कृष्ण देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि मेरे भक्त क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैं भी जाके सुनता हूं, और कृष्ण भी उस कथा में रम जाते हैं। ये है भगवान श्री कृष्ण का माधुर्य। अगर हमें भगवान की प्राप्ति करनी है तो भक्तों के संग में आना है, भक्तों के संग में ही भगवान प्राप्त होते हैं। जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं, विद्वान होने की आवश्यकता नहीं, केवल हमें भक्ति भाव से भगवान का नाम कीर्तन, नाम संकीर्तन करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय इस कलयुग में है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलयुग में हरि के नाम के अलावा और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है, और कोई मार्ग नहीं है। तीन बार बताया गया दोहराने के लिए। जब शास्त्रों में किसी चीज के ऊपर जोर दिया जाता है तो तीन बार दोहराया जाता है। इस प्रकार से ये कलयुग में भगवान की प्राप्ति करना भगवान ने बहुत आसान बना दिया है। केवल भक्तों के संग में आकर नाम संकीर्तन करना, सम्यक कीर्तन, संपूर्ण कीर्तन। चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन किया, हाथों को ऊपर करके कैसे श्री कृष्ण के शरण में जाया जाए ये सिखलाया है। तो अभी थोड़ी ही देर में आरती होगी भगवान की, और उस समय हम हाथ ऊपर करके अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के शरण में ले जा सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु हाथ ऊपर लेके ही अवतार लिए हैं। हाथ ऊपर करने का मतलब है कि अब हमारा कोई सहारा नहीं रहा सिवाय आपके। तो इस प्रकार से आज जन्माष्टमी के अवसर में हमें श्री कृष्ण की कृपा याचना करनी चाहिए कि हम उनके शुद्ध भक्ति में हमेशा रहें, उनके शरण को कभी हम नहीं छोड़ें। अभी हम निवेदन करेंगे पूज्य विजेंद्र शर्मा जी से कि वो कुछ दो बातें भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप सबको बताएं और हम सब को लाभान्वित करें। हरे कृष्ण।
के अवसर पर हमारे पूजनीय अत्यंत स्नेही देवामृत प्रभु जी की आज्ञा से और उनको प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को निवेदन करते हुए भगवान श्री कृष्ण के बारे में दो शब्द आपके सामने रखने के लिए मुझे खुशी होती है। ज्यादा समय लेना नहीं चाहता। श्री कृष्ण भगवान यहाँ पर शीघ्र ही जन्म ले रहे हैं, जन्म लिए ही है, हमारे लिए प्रकट होने वाले हैं। एक ही बात है, अभी देवामृत प्रभु जी से आपने सुना अहम भक्त पराधीनः। श्री कृष्ण भगवान के होकर 5000 साल से ऊपर हो गए, लेकिन उनका छाप, उनका प्रभाव और उनकी नसीहत का जो शब्द है अभी भी कानों में गूंज रहे हैं। हमारे देश पर आपत्ति आई, प्रीतम छवि नैन बसी पर छवि कहां समाए, भरी सराय लखे आप पते की फिर जाए। रस खान कवि कहते हैं मेरा जन्म श्री कृष्ण के लिए है। रस खान कवि की अवस्था को, इतिहास को हम सुने तो रोमांचित हो जाएंगे। और पश्चन श्रृणवन स्पृशन जिग्रन, जब भी जहां पर भी जाते थे, जहां पर भी बैठे थे, श्री कृष्ण का स्मरण ही उनका ध्येय था। और राजा को उस पर बहुत क्रोध आ गया, हाथी के नीचे पांव को बांध करके उनको सजा दी गई श्री कृष्ण की भक्ति छोड़ने के लिए। लेकिन अस्खान मरते हुए कहते हैं प्रीतम छवि नैन न बसी पर छवि कहां समाय, भरी सराय लखे आप पति के फिर जाए। इस प्रकार श्री कृष्ण के रोम रोम पूरा का पूरा शरीर छिन्न विच्छिन्न हो गया। लेकिन बाद में कुछ गूंज वहां पर आ रही थी तो देखा राजा ने, तो कणकणों में भी श्री कृष्ण का नाम उनके देह से वहां पर निकल रहा था। ऐसे श्री कृष्ण का महत्व है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं परीक्षित महाराज पूछते हैं शुकमुनि से, आचार्य जी ऐसे श्री कृष्ण के महिमा के बारे में मुझे बताइए। द्रौण्यस्त्र विप्लुष्टमिदं मदंगं संतान बीजं कुरु पांडवानां जुगोपकक्षिं गतात्त चक्रः मातु समेय शरणं गतायाः पितामहामे समरे मरंजयैः देवव्रताद्याधिरतैस्तिमिङ्गलैः दुरत्ययं कौरव सैन्यसागरं कृत्वा तु यं मत्सपदं स्मयत् प्लवाः। आचार्य जी परीक्षित महाराज पूछते हैं शुकाचार्य जी से, ऐसे श्री कृष्ण की महिमा मुझे बताइए। मेरी मां के पेट में रहते समय अश्वत्थामाचार्य जी ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ा दुष्ट बुद्धि से, और मैं जल रहा था, तब मेरी मां श्रीकृष्ण प्रस्थान किए हुए थे द्वारका को, लेकिन उनके पांव पर मेरी माता गिर पड़ी, अपने माथे को रखा और प्रार्थना करने लगी श्रीकृष्ण मुझे बचाओ 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 बचाओ। तब श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ने के बाद तुरंत सुदर्शन चक्र अंदर प्रवेश किया और गर्भ में शिशु हमेशा घिरता घूमता हुआ रहता है। आज भी डॉक्टरों से पूछिए क्यों माताजी से, किसी भी गर्भवती माताजी से पूछिए, उनके पेट में बच्चा जो है घिरना चाहिए। तब सुदर्शन चक्र को देख करके चारों ओर इर्द गिर्द में परीक्षित महाराज देखने लगा श्री कृष्ण के चक्र को, तब श्री कृष्ण के चक्र से उनकी रक्षा हो गई। इसीलिए परीतहा ईक्षिता इति परीक्षित, ऐसे आचार्य जी कहते हैं, माधवाचार्य जी कहते हैं परीक्षित नाम इसलिए रखा गया। तो गर्भ में भी श्री कृष्ण का दर्शन जिन्होंने किया, प्रहलाद महाराज गर्भ में ही श्री कृष्ण का दर्शन किया, इतना महत्व है। ऐसे भगवान की कथा के बारे में, इतिहास के बारे में मुझे बताकर आप धन्य बनाइए। ऐसे परीक्षित महाराज पूछते हैं पितामहा में समरे मरंजय ही देवव्रताद्यातिरथ स्तिमिंगलई दुरत्ययम् कौरव सैन्य सागरम कृत्वापि मत्सपदम स्मयत्प्लवा यत्प्लवाह। 11 अक्षौणी सैन्य कौरवों का था, 7 अक्षौणी सैन्य पांडवों का था, लेकिन विजय हुई पांडवों को, क्योंकि अभी देवामृत प्रभु जी से आपने पूछा यत्र योगेश्वर कृष्ण, जहां पर श्री कृष्ण भगवान का विशेष रूप से सन्निधान है, ऐसे वहां पर हमेशा विजय होगी। नारद महर्षि एक बार श्री कृष्ण की दिनचर्या को देखने के लिए आए, तो एक घर में गाय की सेवा कर रहा था, एक घर में माता पिताओं की सेवा कर रहा था, मातृदेव हुआ पितृदेव हुआ, एक घर में वहां पर तुलसी की पूजा कर रहा था, एक घर में आकर देखते हैं भगवान पूजा कर रहे हैं। तो नारद जी को आश्चर्य हुआ। इस कथा से मैं अपने व्याख्यान को समाप्त कर रहा हूं और मंगल कर रहा हूं। तब श्री कृष्ण ध्यानमग्न हुए थे, नारद जी ने देखा, श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगे, श्री कृष्ण ने अपने हाथों से ही उनको सूचना दी, संकेत दिया, तो आप चुप बैठ जाइए, मैं ध्यान कर रहा हूं। तो एक घंटा हुआ, दो घंटा हुआ, कई घंटे हो गए, नारद जी की सहनशीलता टूटी। तो बाद में नारद जी जोर जोर से कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान अपने भगवान को दिखाइए जिसकी आप पूजा कर रहे हैं। तो नारद जी अभी दिखाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो उठे, भगवान की पेटी को अपने माथे पर रखे और उसमें पेटी निकाले, तो अंदर एक पेटी, ऐसी 100,000 पेटियां निकली। भगवान का वहां पर संपुष्ट नहीं, भगवान की मूर्ति नहीं, कुछ भी नहीं। बाद में एक रत्न कथित वहां पर संपुष्ट निकला, तो उसको लेकर के श्री कृष्ण कूदने लगे, चिल्लाने लगे, नृत्य करने लगे। तो नारद जी को और भी वहां पर आशंका हो गई। बाद में श्री कृष्ण से प्रार्थना की, अपने भगवान को दिखाइए, तो श्री कृष्ण उसको निकालते हैं, अपने आंखों को लगाते हैं। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, यह मेरे भक्तों का रज है, भक्तों का धूलिकण है, इस प्रकार श्री कृष्ण ने कहा। अपने भक्तों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया है, आज भी वही साक्षी है, यह अतिशयोक्ति नहीं है, अतिशयोक्ति के लिए मैं खिलाफ हूं। देवामृत प्रभु जी का व्यक्तित्व है श्री कृष्ण उनके, क्योंकि नाहा श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं प्रभास क्षेत्र में, और पांडवों को उपदेश देते हैं द्रौपदी के पूछने के बाद, कुंती के पूछने के बाद उपदेश देते हैं, श्री कृष्ण भगवान आपका दर्शन बहुत दिनों के बाद हुआ है, नहीं हम मयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिला मया हा ते पुनंतुरुकालेन दर्शना देव साधवा। गंगा मया में स्नान करने से पवित्र होते हैं, और नदियों में स्नान करने से, मंदिरों में जाने, बद्रीनाथ केदारनाथ जाने पर हम पुनीत होते हैं। और अभी अभी जो वैष्णो देवी में और भी जो चल रहा है बहुत घमासान, वहां भी जाने से भगवान का दर्शन होता है, ठीक है, लेकिन कहीं भी भगवान नहीं है। और जो सच्चे भक्त है, और हमारे पूजनीय राधानाथ स्वामी जी और देवामृत प्रभु जैसे महात्माओं में श्री कृष्ण भगवान साक्षात वहां पर बसे हुए हैं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और उसके लिए आप लोग ही, ये जो अथाह सागर है और भक्तों का यह सागर है, नीचे से मैं आते समय देखा कितने हजारों भक्त वहां पर बैठे हुए हैं, मैं भाव्यभोर हो गया। 12 बजे के अवसर पर, रात के अवसर पर कोई भी और भी कुछ होते हैं, त्योहार होते हैं, लेकिन वहां पर और ही होता है, यहां पर भक्ति का प्रभाव है। और ज्यादा समय लेना नहीं चाहता, इसलिए मैं एक बार अकबर बादशाह जैसे कहा, अकबर बादशाह बीरबल के साथ में चल रहे थे, एक बूढ़ी माँ वहां पर आम के पौधे लगा रही थी, तो बादशाह को, अकबर जी को बहुत आग बबूला हो गए, तो बीरबल से कहा, उसको अपने खड्ग से काट दो उसके गले को। बीरबल ने कहा, आप थोड़ा समाधान लीजिए, सहनशीलता लीजिए, इसमें कुछ अर्थ है। तो बाद में उस बूढ़ी के पास में जाकर पूछते हैं, बीरबल जी बादशाह आए हैं तो आपको मिलना चाहते हैं। मुझे बादशाह की परवाह नहीं है, मुझे कोई बादशाह से कोई संबंध नहीं, उसको लौट जाने को बोल दो। इससे और भी आग बबूला हो गए। बाद में बीरबल ने अकबर जी को लेकर वहां पर आए, तो बीरबल जी पूछने लगे, माँ जी, बूढ़ी माँ, आप अभी तो मरने वाली है, कुछ घंटों में या एक दिन में, दो दिन में, क्यों आम के पौधे क्यों लगा रही हो? तो वह कौन सा बादशाह है, उसको दिमाग है या कुछ है? तो मेरी नानी ने, दादी ने और आम का पेड़ लगाई थी, इसलिए मुझे फल खाने के लिए मिला। तो मेरी पोती के लिए और भारतीय समाज के लिए, सभी बच्चों के लिए मैं यह आम का पेड़ लगा रही हूं। इसका मतलब है, इस प्रकार के आम के पेड़ को हमारे प्रभु श्रीपाद जी ने पेड़ लगाई है, और अपनी परवाह न करते हुए मुझे सौभाग्य मिला, उनके संविधान में रहा, मेरे पीठ पर हाथ रखे, कई बार रखे हैं, और मेरे गुरुजन गोपालाचार्य जी के हमारे यहां मातुंगा में बारम्बार पधारते पोदार कॉलेज में उनका लेक्चर होता था, तो अपने पास में मुझे बिठाते थे। यह उनकी कृपा है, और उनकी कृपा के लिए तुलसी पत्र की सेवा करने की मुझे मौका वे प्रदान करे, और जन्म जन्मांतर में ब्रह्मंता गुरुवत् साक्षादिष्टम दैवम श्रियपति आचार्य श्रीमदाचार्य संत मे जन्म जन्मनी। राघवेंद्र स्वामी जी, रामदास जैसे महात्मा भगवान से प्रार्थना करते हैं, और आपका तो दर्शन मुझे हमें चाहिए, लेकिन आपके दर्शन कराने वाले प्रभुल पाद जैसे गुरुजनों का जन्म जन्मांतर में भी हमें सत्संगति प्रदान करें, यही श्री कृष्ण और जन्माष्टमी का संदेश है। आप लोग इतने भक्ति से, भाव से, श्रद्धा से यहां पर आप लोग पधारे हुए हैं, और आप लोगों को अभी बरसात नहीं है। बरसात क्यों नहीं है? श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्य यज्ञ कर्म समुद्भवः। यह भारत देश है, संस्कृति का देश है, धर्म का देश है। धर्म यतो धर्मः ततो जयः, और धर्म की रक्षा कहां पर होती है? वहीं पर बरसात ठीक समय पर होता है, पौधे उगते हैं, सभी लोग सुखी रहते हैं। और भी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपकी आज्ञा को पालन करने के लिए हम कटिबद्ध है, और हमारे ऊपर आप कृपा करें, और सारी मानव जाति को सर्वे जना सुखिनो भवंतु, और जानवरों को, सभी पशु पक्षियों को, जंतुओं को, कोई भी हमारे यहां, हमारे देश में नहीं, दुनिया में, दुनिया भर में कोई भूखा न रहे, और सभी तंदुरुस्ती से रहे। सहनावतु सहनौ भुनक्तु स वीर्यं करवावहै तेजस्विना। आपस में हम कभी भी झगड़े नहीं, और उन लोगों को भी आप